महिला हिंसा अभियान की दूसरी कड़ी अब प्रस्तुत है।
जोहार श्रोताओं, मैं अमित
और मैं सरस्वती आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं महिला हिंसा अभियान की दूसरी कड़ी।
तो सरस्वती, महिला हिंसा पर जो तुमने पिछली बार हम सभी को इतनी सारी बातें बताई थी, उसमें झारखंड की सबसे बड़ी समस्या डायन बिसाही पर तो तुमने हमारे श्रोताओं को बताया ही नहीं।
तुम सही कह रहे हो अमित। तो श्रोताओं, आज की कड़ी में हम बात करेंगे हमारे समाज में महिलाओं के उन विशिष्ट वर्गों के बारे में जिनमें रहने वाली महिलाएं अक्सर महिला हिंसा का शिकार होती हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं या तो आदिवासी होती हैं, या दलित महिलाएं होती हैं, या फिर मुस्लिम महिलाएं होती हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी महिलाओं के बारे में।
तो श्रोताओं, क्या आपको पता है झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर होने वाली हिंसा में अब तक 1213 महिलाओं की जान जा चुकी है। आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास के कारण वैसे महिलाएं जो अकेली और कमजोर हैं या फिर जिनका पुरुष साथ कमजोर है, उन्हें समाज डायन करार देकर उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, सार्वजनिक अपमान और यहां तक कि उनकी हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाता है।
कई बार तो किसी महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसे डायन करार दे दिया जाता है, क्योंकि आदिवासी महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए भी अकेली महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसे डायन करार देकर उसके साथ तरह तरह की हिंसा करी जाती है।
श्रोताओं, इसी बात पर आइए सुनते हैं फरकेश्वर महतो के गांव में पेड़ की देवी के साथ हुई डायन बिसाही और प्रताड़ना की दास्तान।
महिला हिंसा पेड़की देवी की दस्ता। झारखंड प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हिंसा धनबाद जिला के तपचासी प्रखंड अंतर्गत खेराबेड़ा की पेड़की देवी के ऊपर घटित घटना बयां करते हुए कहना कि दिनांक 22 अप्रैल 1999 के शाम 5 बजे पेड़की के रिश्तेदारों ने डायन कर बेरहमी से पीटा और नंगा कर मेला पिला गया और सारे आम गाँव में घुमाया गया और पेशाब के रास्ते में बोतल घुसेड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, पेड़की के 3 जवान पुत्रियों को भी बेरहमी से पीटा गया था। बताते चले कि खेराबेड़ा में 200 घर है और 100 घर सरकारी नौकरी वाले हैं। घटना होने के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा पेड़की देवी का सूट तक नहीं लिया गया था। साक्षरता कर्मी के सहयोग से घटना के 15 दिन के बाद हरियतपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। आखिर क्यों प्रशासन सुधी लेता? थाना प्रभारी 15,000 रुपया में बिक गया था। पेड़की घटना दैनिक समाचार पत्रों में छपने के बाद बुद्धिजीवी प्रशासन हरकत में आया और थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखवाई। उक्त घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था। बताते चले कि पेड़की से मिलने जनवादी महिला समिति धनबाद की अध्यक्षा संजय बख्ती, महिला आयोग दिल्ली, मानवाधिकार आयोग दिल्ली, दूरदर्शन चैनल दिल्ली के प्रतिनिधि आए और घटना विधानसभा में कोडरमा विधायक अन्नपूर्णा देवी जो वर्तमान में झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने पेड़की देवी की घटना को विधानसभा में उठाया और लोकसभा में पेड़की घटना विस्तार पूर्वक सदन में चर्चा और बहस हुई और पेड़की घटना के पहले देश में डायन एक्ट नहीं बना था। बताते चले पेड़की देवी को डायन कहकर यदि नहीं पीटा जाता तो देश में डायन एक्ट नहीं बनता। वर्ष 2005 के एनसीईआरटी के पुस्तक तीसरी कक्षा पाठ्य पुस्तक गणित में पेड़की देवी को चित्र सहित घटना का रेखांकित किया गया। घटना को दबाने के लिए पूर्व विधायक डुमरी शिवा महतो आए थे। बताते चले कि 80,000 रुपया रिश्वत के रूप में मुझे दिया जा रहा था, पैसा नहीं लेने पर मुझे पिस्तौल सटाकर जान मार देने की धमकी। बताते चले कि पेड़की के आरोपितों को सिविल कोर्ट में आरोपितों को सजा सुनाया गया था। आज के दिन तक पेड़की को न्याय तक नहीं मिला। रिश्तेदार बाहुबल धनबल होने के कारण अपील में चला गया जो रांची हाईकोर्ट में 1200 केस के बाद है और लंबित पड़ा है। धन्यवाद। मैं फरकेश्वर महतो तपचासी धनबाद से मेरे सामने घटित घटना को बयां करते हुए धन्यवाद।
अब अमित तुम बताओ कि दलित महिलाएं किस प्रकार से महिला हिंसा का पात्र बनती हैं?
देखो सरस्वती, दलित महिलाओं को दो प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पहला कि वो एक दलित हैं और दूसरा कि वो एक महिला हैं। जब भी कोई जातीय दंगा होता है तो दलित महिलाएं एक आसान शिकार होती हैं। सामूहिक बलात्कार, निवस्त्र कर घुमाना जैसी घटनाएं गरीब महिलाओं के साथ अक्सर होती हैं।
तुम सही कह रहे हो। मैंने सुना है कि भौरी देवी, जो कि राजस्थान में रहने वाली एक दलित महिला है, 1992 की बात जब वो और उसका पति ऊंची जाति वाले लोगों के खेतों पर रोज की तरह मजदूरी कर रही थी, तभी जिन लोगों के यहाँ वो काम करती थी वे आए और उसके पति को मारकर बेहोश कर दिया और भौरी देवी का सामूहिक बलात्कार किया। क्योंकि उसके साथ उसके कार्यस्थल में हिंसा हुई तो काफी सामाजिक कल्याण संस्थानों ने भौरी की मदद करते हुए यौन उत्पीड़न का केस उच्चतम न्यायालय में दर्ज किया है, पर आज 21 साल के बाद भी भौरी देवी को न्याय नहीं मिल पाया है।
हाँ, आंकड़ों की माने तो 1% से भी कम मामलों में अदालत ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं 17.5% हिंसा के मामलों में खुद पुलिस ने ही दलित महिलाओं को न्याय में बाधा डालने की कोशिश की है। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र सिन्हा इस विषय में दुमका से क्या खबर लेकर आए हैं।
मैं शैलेंद्र सिन्हा झारखंड मोबाइल वाणी दुमका से बोल रहा हूँ। आज नगर थाना में महिला हिंसा को लेकर एक बैठक हुई। महिला हिंसा समाप्त करने हेतु पहल की गई मानवी जुमाओ मंच एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से। आइए इस शपथ समारोह में हमारे साथ एक अधिवक्ता है किरण तिवारी। हम उनसे जानते हैं कि महिला हिंसा कानून क्या है और दुमका जिले में कितना इसका प्रभावी हो रहा है। किरण तिवारी आप बताएं।
हम लोग अभी मानवी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर के पुलिस कर्मियों के साथ बैठक किए और सबने शपथ लिया कि हम लोग महिला सुरक्षा की ओर ध्यान देकर संवेदनशील होकर के उस पर ध्यान रखेंगे और हम महिलाओं का भी उसमें सहभागी रहेगा और साथ ही जो कानूनी एस्पेक्ट है उसके क्रियान्वयन के लिए सभी ने अपनी अपनी सहमति जताई कि आप लोग सहयोग करें और दुमका जिले के क्षेत्र की लड़कियों को सुरक्षा दी जाएगी। जो भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं उसको परिपूर्ण किया जाएगा और समाज में संतुलन लाने का पूरा पूरा भरसक प्रयास करेंगे। सबने इस कार्यक्रम को सराहा और उस लिए वे शपथ को आए दिन हम लोग उसको सफल करेंगे और समाज में संतुलन लाने का एक अधिवक्ता के रूप में मैं भी यहाँ के पुलिस कर्मियों को सहयोग करूंगी और जितने भी कानून वर्तमान दौर में महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में है, हिंसा के संदर्भ में कानून बने हुए हमारे पास यौन प्रताड़ना के संदर्भ में जो भी कानून है उसके संदर्भ में और जितनी भी ताकि बच्चियां अपने अवस्था के साथ अपने बचपन के साथ अपनी पूरी जिंदगी स्कूल कॉलेज आना जाना पढ़ाई पूरा कर सके और कोई भी तरह का हरकत उनकी पढ़ाई पर उनके भविष्य पर असर न डाल सके इसके लिए आज हम लोगों ने पूरा पूरा अपना शपथ ग्रहण किया।
अब अगर हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो मुस्लिम महिलाएं आसान शिकार होती हैं। मुस्लिम महिलाओं को अक्सर 3 कारणों से भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। मुस्लिम महिला होने की वजह से, दूसरा एक महिला होने की वजह से और तीसरा गरीब होने की वजह से। अगर हम आंकड़ों की माने तो औसतन 60% मुस्लिम महिलाओं का निकाह 18 वर्ष की उम्र से कम में होता है और औसतन 75% मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक, पारिवारिक या स्वास्थ्य संबंधित फैसले लेने के लिए भी अपने शौहर या पति की इजाजत लेनी पड़ती है।
जानते हैं श्रोताओं, साहबानो एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी और 5 बच्चों की माँ थी, जिन्हें 1978 में उनके शौहर ने तलाक दे दिया और केवल 175 रुपए देकर कहा कि इसमें गुजारा कर ले। मुस्लिम समाज में यह आम बात मानी जाती है कि शौहर अपनी बीवी को कभी भी तलाक दे सकते हैं, तो साहबानो के शौहर ने भी ऐसा ही किया। साहबानो के पास अपने और अपने बच्चों के लिए कोई और जीविका का साधन न होने के कारण साहबानो अपने पति से गुजारा लेने के लिए अदालत से मांग करी। उच्चतम न्यायालय तक पहुँचते मामले को 7 साल बीत चुके थे। न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया जो हर किसी पे लागू होता है, चाहे वो कोई धर्म, जाति या संप्रदाय का हो, और न्यायालय के निर्देश के अनुसार साहबानों को निर्वाह व्यय के समान जीविका दी गई।
तो श्रोताओं, हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसा में किन किन कारणों से वृद्धि हो रही है। क्या ये आर्थिक कारणों की वजह से हो रही है, जैसे दहेज, मानव तस्करी, संपत्ति विवाद, पलायन, या फिर सामाजिक कारणों के कारण, जैसा कि हमने इस कड़ी में बताया है, या फिर ये अंधविश्वास का नतीजा है या कुछ और। आप अपने अनुभव या प्रतिक्रियाएं विस्तार से बताएं नंबर 3 दबाकर।
सवाल फिर से एक बार, महिलाओं के प्रति हिंसा में किन कारणों से वृद्धि हो रही है? क्या यह आर्थिक कारणों की वजह से हो रही है, जैसे दहेज, मानव तस्करी, संपत्ति विवाद, पलायन, या फिर सामाजिक कारणों के कारण, जैसे कि हमने इस कड़ी में बताया है, या फिर यह अंधविश्वास का नतीजा है या कुछ और? अपने अनुभव या प्रतिक्रिया विस्तार से बताएं नंबर 3 दबाकर।
धन्यवाद।